نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نیکی کے سفیر اس میں سے انشاءاللہ ہم کہانی نمبر 14 پڑھیں گے پیج 118 سے نام ہے جانے والی کی یاد آتی ہے آنسوں کی برسات میں وہ اپنا ماجرہ بیان کر رہا تھا اس کی بوڑھی ماں اس سے بڑی محبت کرتی تھی لیکن اس کا رویہ اس کے برعکس تھا ماں نے بڑا روکا کہ بیٹا تم ادھر رہ کر ہی تعلیم حاصل کرو اور یہاں ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں میری آنکھوں سے دور نہ جاؤ وہ کھڑکی میں کھڑی اشک بار نگاہوں سے یعنی آنسو تھے آنکھوں میں اور مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنے کمزور کانپتے ہوئے ہاتھ لہرا رہی تھی میں کھڑا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھیں لیکن میرے گناہوں نے میرے دل کو اتنا سخت کر دیا کہ اس کی آہو بکا کا میرے دل پر ذرا بھی اثر نہ ہوا میں نے اس کی تمام تر ہمدردیوں اور محبتوں کو پسے پش ڈال دیا اور اس کے اصرار کے باوجود اپنے شہر میں تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا دنیا کی رنگینیاں میرے دل و دماغ پر پوری طرح چھا گئی تھیں روشن خیالی اور خود پسندی نے مجھے اپنی گرفت میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا خواہشات اور لذتوں نے مجھے اپنے دامن فریب میں پھنسا لیا جنوں اور انسانوں میں موجود شیطان ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے اور مجھے اپنے اس غلط فیصلے پر ڈٹے رہنے کی تلقین کر رہے تھے میں اپنی ماں کی نصیحتوں بھلائیوں خیر خواہیوں اور شفقت و محبت کو پامال کر کے چل دیا وہ کھڑے کھڑے مجھے الوداع کہہ رہی تھی میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا لیکن وہ بدستور اپنی جگہ کھڑی رہی یعنی مستقل ادھر ہی رہی اور میرے قدموں کے نشان دیکھتی رہی کئی دن گزر گئے میں واپس نہ گیا میرے کانوں میں میری ماں کی آواز گونج رہی تھی میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں تیری طرف کو میلی نگاہ سے نہ دیکھے میرے پیارے بیٹے تو کہاں جائے گا پھر میرے کانوں میں یہ آواز آنے لگی بیٹا تو نے واپسی میں اتنی دیر کیوں کر دی میں لہو لائب میں مشغول ہو گیا کروفر سچ دھچ نے مجھے غفلت میں ڈال دیا گناہ پر گناہ کرتا گیا میری آواز بہت خوبصورت تھی میری آواز نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا میرے برے دوستوں نے مجھے گیت گانے پر اکسایا میں گیت گانے لگا یعنی گانے اور شیطان مجھے میرے فن کی داد دینے لگا پھر شیطان ہی سے میرا دل بہلنے لگا آخر ایک دن آیا مجھے تھیٹر ہال میں گانے کی دعوت دی گئی میں بہت خوفزدہ ہوا اور میرے اندر جو فطری حیا تھی مجھے جھنجھوڑنے لگی میں اسی کشمکش میں رہا کہ یہ دعوت قبول کروں یا نہ کروں میرا دل مجھے ڈانٹنے لگا کہ تو اس میدان کا آدمی نہیں تیرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے اور یہ تو برے لوگوں کا کام ہے میرا دل مجھے ملامت کرتا رہا لیکن نفس امارہ یعنی برائی کا حکم دینے والے نفس نے مجھے ابھارا یہ بڑا قیمتی موقع ہے ہاتھ سے نہ جانے دو تمہیں بہت جلد شہرت مل جائے گی کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے وہ پیشکش قبول کر لی میں اسٹیج پر چڑھا اور پہلا بول گاتے ہی میرے اندر کی شرم و حیا کی جو رمق باقی تھی وہ ختم ہو گئی میری مسخور کن آواز سے پورا حال جھومنے لگا ہر طرف سے داد و تحسین کی صدائیں آنے لگیں میرا حلقہ یارہ یعنی دوستوں کی محفل یا میرے جو کلوز سرکل فرینڈس تھے میری دوستیاں بڑھنے لگیں ہر طرف سے دعوت نامے آنے لگے اب میں ایک رات ایک جگہ اور دوسری رات دوسری جگہ بسر کرتا کوئی گناہ ایسا نہ رہا جس کا میں نے ارتکاب نہ کیا ہو ایک دن مجھے بہت بڑی کمپنی کی طرف سے گیت سنانے کی آفر ہوئی جو میں نے بڑی خوشی سے قبول کر لی اور اس پروگرام میں بھرپور شرکت کی اس محفل کے بعد ایک ماہر فن استاد سے میری ملاقات ہوئی اس نے مجھے مزید بہتری اور ترقی کا شوق دلایا اور میری رہنمائی کا وعدہ کیا تاکہ میں اس فن میں مزید نکھار پیدا کروں اس کے ساتھ جمعرات کا وقت طے ہو گیا دن تیزی سے گزرنے لگے میں وعدے کے مقررہ وقت سے دو دن پہلے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آیا گھر میں کچھ تقریبات تھیں غیر معمولی چہل پہل تھی جمعرات کو میرے بھائی کی شادی تھی اور بدھ کو میری دو بہنوں کی تقریب نکاح تھی میری ماں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی یعنی شی واز ویری ہیپی کبھی ادھر آتی کبھی ادھر جاتی اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ تھی ایسی مسکراہٹ کے روئے زمین پر چھڑک دی جائے تو پورا جہان کھل اٹھے دن ڈھل گیا رات کی سیاہی چھا گئی سارے کام مکمل تھے ہر چھوٹا بڑا اسے مبارکباد پیش کر رہا تھا फिर बुध का दिन आ गया। इस रोज मेरी दो बहनों के हाथ पीले होने थे, यानी उनकी शादी थी, लेकिन हम पर अचानक ऐसी आफत टूट पड़ी जिसने मेरी जिंदगी का धारा बदल दिया। इस अचानक टूट पड़ने वाली मुसीबत ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया और मेरे मुर्दा दिल को जिंदगी बख्शी। शायद ये मुसीबत का पहाड़ मुझ पर टूटा ही इसलिए था कि मुझे गंदगी के ढेर से खींच निकाले और गाने बजाने की जिल्लत से छुटकारा दिला दे। मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई है। चंद लम्हे पहले वो हमारे साथ खुशी के शादियाने बजा रही थी, अब वो हमेशा की नींद सो गई। इसका बेजान जिस्म चारपाई पर पड़ा था और ज़माने हाल से कह रहा था, अलविदा मेरे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें अब सहारे की ज़रूरत नहीं रही। घर में यकायक कहराम मच गया, हर चेहरा गमगीन हो गया, बचती हुई शहनाइयाँ आंसुओं में डूब गईं, हर आंख अश्कबार थी, दिल काबू में ना आ रहा था। हर जानिब से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, हर फर्द रो रहा था, लेकिन मेरी माँ हमेशा के लिए चुप सादे बिस्तर पर पड़ी थी। इसे क्या खबर कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सबने इसके जनाजे की तैयारी की, औरतें इसे गुसल देने लगीं। जब इसे गुसल दे दिया गया, मैंने इस पर आखिरी नज़र डाली। इसका चेहरा बड़ा पुरसकून था। मैंने इसकी आंखें, हाथ और चेहरा गौर से देखा, फिर मैंने इसे बोसा दिया और मेरी आंखों में बरसात की झड़ी लग गई। मैं फूट फूट कर रो दिया, मेरी बहनें भी रो पड़ीं। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हम इसे जनाजा गाह में लाए, नमाजे जनाजा पढ़ी। मेरे जिस्म का अंग अंग, यानी एक एक हिस्सा, इसके लिए दुआ कर रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी वालदा की हमेशा नाफरमानी की, कभी कोई बात ना मानी, इसका हक अदा ना किया, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर हम इसका जनाजा कब्रिस्तान ले गए। हमने इसकी कब्र पर मिट्टी डाली और दुआ की, ए अल्लाह इसे कलमे हक पर साबित रखना, ए अल्लाह इसे कलमे हक पर साबित रखना। सारा दिन ताज़ियत करने वालों के साथ गुजर गया। जब रात छा गई तो मैं जल्दी से कमरे में आया और लाइट बंद कर दी, फिर अपने बिस्तर पर लेट गया। माजी की यादें बिजली के कुमकुमों की तरह दूर तक चमकती चली गईं। ये यादें सताने लगी। माजी के एक गोशे से मेरी माँ की सदा उठी और पूरे कमरे में गूंजने लगी, ऐ मेरे बेटे, खड़े हो, नमाज में सुस्ती ना करो, बेटे उठो, तुम्हारे साथी मस्जिद में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, मुझे छोड़कर मत जाओ, यहीं रहकर तालीम हासिल करो। आह, मैंने अपनी मेहरबान माँ की हर सदा अनसुनी कर दी, अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। हसरतें और नदामतें रह रह कर उमड़ती चली आ रही थी। गम और परेशानी के पहाड़ मुझ पर टूट रहे थे, मुझे सांस लेना दूभर हो गया। बीते दिनों में वालदा की जिस कदर नाफरमानियाँ की थीं, एक फिल्म की सूरत में मेरी आंखों के सामने आती चली गईं। वो मेरे साथ भलाई करती थी, लेकिन मैं इससे इसकी मोहब्बत के सिले में कुछ भी ना देता था। वो मुझे खुश रखती थी, मैं इसे गम और परेशानी के हवाले कर देता था। मुझे इसकी हमदर्दियाँ और शफकतें रह रह कर याद आने लगीं, लेकिन अब मेरे लिए हसरतों के सिवा कुछ न था। आह, मैं वालदैन का इस कदर नाफरमान था। मेरे ज़मीर ने मुझे कचोका लगाया, ज़रा सोच तो सही, आखरत में तेरे साथ क्या मामला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत काते, कतई रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जो रिश्तों को तोड़ता है, किनशिप। मां से बढ़कर कौन सिला रहमी का मुस्तहिक है। मैं डरने लगा कि मैं अपनी वालदा की नाफरमानी करते रहा, अब दुनिया ही में इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, मेरी औलाद भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह, काश मेरी वालदा जिंदा होकर वापस आ जाए, मैं इसकी पेशानी को बोसा दूँ, इसके पाँव अपने आंसुओं से धोऊँ। इसने बुढ़ापे के बावजूद मेरे साथ अच्छा सलूक किया। आह, इसने मुझे अपने पेट में रखा, इसने मुझे दूध पिलाया, मेरे लिए रातों को जागती रही। आह, मेरा दिल किस कदर सख्त था। मेरा रवैया अपने बाप के साथ भी इतना अच्छा ना था। मैं रो पड़ा, फौरन नमाज पढ़ने लगा। मैंने कुरान पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान गुंग हो गई, मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने दिल की सख्ती को पिघलाने की कोशिश की, दिल की गहराइयों से सिसकियों भरी दुआएं निकलने लगीं। मेरे बदन का हर रोंगटा मेरी दुआओं पर आमीन कहने लगा। मैंने अपने रब से अहद किया कि अपनी वालदा की मौत के बाद इसके साथ नेकी करूंगा, इसके लिए दुआएं करूंगा, इसकी तरफ से सदका दूंगा, अल्लाह ताला से मगफरत की दुआ करूंगा। मैंने अल्लाह से दुआ की, मुझे इस सेहत पर इस्तकामत दे। मैं बार बार ये दुआ कर रहा था, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को उलट पुलट कर देने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। मैंने नमाज खत्म की, फिर अपने अलमंगेज माजी पर नजर दौड़ाई, अपना रिकॉर्ड खोला, रजिस्टर चेक करने लगा। इनमें एक रजिस्टर ऐसा था जिसमें गाने वगैरह थे, कुछ खतूत और तस्वीरें निकली, गानों के कैसेट और बाज़ फुखश फिल्में भी थीं। फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो कुछ रुक्के यानी खत बरामद हुए। इनमें एक रुक्का वो था जिसमें जुमेरात के दिन एक महफिले निशात में शरीक होने का वादा था। मैंने इसे फौरन फाड़ दिया और अपने करतूत याद करके रोने लगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। मेरी माँ को जुदा हुए अब दूसरा दिन था। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमाए, आमीन। इसमें जो हदीस थी उसमें सही बुखारी 5984 और सही मुस्लिम 2556 और तिरमिज़ी 2140 और 3522। आप देखिए कि बज़ाहर एक बहुत ही तकलीफ़दह बात है ना कि खुशी वाले घर में गम हो। पहले तो इस बात को समझना है कि कोई भी खुशी किसी लम्हे भी गम में बदल सकती है। जो भी इसमें मंज़र खींचा गया, पहले आप देखिए कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसको जवानी में कुछ करने का शौक़ था और उसने अपनी माँ की बात को नहीं समझा, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसे अंदाज से बात समझाई कि ये तो अच्छा हो गया लेकिन इसकी माँ ना देख सके। आपके मेरे लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि अपने माँ बाप को उनकी ज़िंदगी में खुश कीजिए। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं, तुम अच्छे काम तो करोगे पर मैं नहीं देखूंगी, तुम अच्छे तो हो जाओगे मगर मैं नहीं देखूंगी। तो इसमें आप अपनी दुआओं में भी ये दुआ शामिल रखें कि अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अच्छे काम करते देखें। अधूरी दुआ ना करें, ये ना कहें कि अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना, कि हमारी ज़िंदगी में नेक बना, हम इनको देखें। फिर दूसरी बात देखिए कि बुरी दोस्ती ने उसके लिए एक से दूसरी बुराई का रास्ता खोल दिया। बाज़ार लोग कहते क्या हर्ज है, म्यूज़िक क्या कहता है, इस वॉइस ऑफ द सोल है और रूह की ग़िज़ा है। याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने जो बात कह दी ना उसमें किसी को शक नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है, जैसे बारिश के बाद सब्ज़ा उगता है ज़मीन पर। तो ऐसी चीज़ों में से जब एक चीज़ ज़िंदगी में आती है तो दूसरी ज़रूर आती है। अपने पिछली कहानियों में भी देखा है ना, एक बुराई आई तो सारी आ गई, एक गई तो सारी चली गई। जैसे ट्रेन का इंजन जिस तरफ जाएगा तो पिछली सारी बोगियाँ भी उधर ही जाती हैं। तो आपकी मेरी ज़िंदगी में नेकियाँ और बुराइयाँ इसी तरह एक के बाद दूसरी आती हैं। आप एक का रास्ता रोकें, बाकी भी बुराइयाँ इंशाल्लाह रुकेंगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो चीज़ इसमें दिख रही है कि वो बहुत दूर चला गया और इसने फिर बड़े से बड़े बुराई की, तो इसमें एक लफ्ज़ है शोहरत। कभी भी दिल में आपके कभी 1% भी शोहरत का शौक आने लगे, मशहूरी, फेम, ग्लैमर, हाउ मैनी पीपल नोज यू, तो एक जुमला बोले। मैं अपने आप साथ हमेशा ये जुमला बोलती हूँ, शैतान से भी ज़्यादा कोई मशहूर है मशहूर, तो क्या उसकी शोहरत उसके काम आएगी? फिर अगर कोई और दिल में जोश या कोई ऐसी बात आने लगे ना, तो ये सोचिए आज दुनिया में कितने बातिल फैलाने वाले मशहूर हैं, दूसरे मज़ाहिब के गलत काम करने वाले, तो क्या उनकी शोहरत उनको फ़ायदा देगी? बातिल पे है ना, हक पे कोई है, अच्छे काम कर रहा है, ख्वाहिश नहीं है, इरादा नहीं, नीयत नहीं, अल्लाह लोगों तक बात पहुंचा दे, उसको ये खुशी ज़रूर होनी चाहिए कि मेरी वजह से हिदायत आम हो जाए या मेरा सदका जारिया बन जाए। लेकिन अपनी ज़ात की शोहरत, मिसाल आप देखिए कि आप अपने ऊपर लेकर सोचिए कि आपको कितने लोग जानते हैं, हर एक अपना सोच ले, बचपन से लेकर जवानी, स्कूल में गए, स्कूल के बाद कॉलेज में गए, 50, 100, 200, 300, 1000 लोग, माइट बी, हम एक एवरेज पर्सन को लेते हैं, कि जो अपनी जिंदगी के कैरियर के आगाज में है, पैदा होने से लेकर मैट्रिक करने तक 1,000 लोग उसको जानते हैं, ठीक है। कैरियर में आ गया, अपने फील्ड का बहुत फेमस शख्स बन गया, 5,000 जानने लगे। शादी हुई, ससुराल और से और बच्चे, 30-40 साल की उम्र में पहुंचा तो 10,000 जानने लगे। बिलफर्ज बैठे बैठे उसको एकदम यहां दर्द हो, खिंच पड़े और पता चले कि इसको हार्ट अटैक हो रहा है। क्या ये 10,000 लोग इसके इस हार्ट अटैक को रोक सकते हैं? इन 30 सालों में इसको कितनी दफा सर का दर्द हुआ होगा? क्या इतने लोगों का जानना इसके फायदे में रहा? व्हाट डज इट मीन? ये जो फेम और शोहरत है ना, ये भी एक शैतान ही कह लीजिए कि हवा भरता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेमस होने से क्या होगा? देखिए, फेमस तो शैतान हुआ था, जब अल्लाह ने कहा सजदा करो, सब ने सजदा किया तो ये खड़ा रहा, तो फेमस हो गया ना। टू बी प्रोमिनेंट, इस चीज को दिल से खुर्चेंगे ना, फिर शोहरत मिलेगी। कई लोगों को बड़ा शौक होता है मशहूर होने का, लोग हमें जाने, और यकीन करें एक सब बहुत बड़ा फितना, किसी जगह अपना नाम लिखा देख ले, किसी स्क्रीन पे देख ले, किसी जगह अपने आप को देखे, जैसे लोग तो किताबों में नाम लिखाते हैं ना, गिनीज बुक और फलां, शोहरत के लिए बनी हुई। लिख भी दिया तो क्या हुआ? आप दुनिया के टॉलेस्ट मैन है, आप सबसे लंबी मूछों वाले आदमी हैं, आपको दिन में उन मूछों ने जितनी दफा सताना है और आप उनको रख के कहाँ सोते होंगे और खाते क्या और क्या गंदगी होती होगी। आप इधर अपने घर में बैठे हैं, आपको उससे क्या फर्क हो रहा है? ये उनका इशू है, आप उनको दिख रहे, ये दिमाग से निकाल दें। आजजी हम्बलनेस आती ही इससे। एक सवाल आपने किया था शुरू में कि हम्बल होने और कॉन्फिडेंट होने में क्या फर्क है, इसको समझ लीजिए। इंग्लिश में एक जुमला बोलते हैं, हम्बलनेस कम्स बिफोर ऑनर, बिफोर ऑनर। इज्जत पानी है तो पहले हम्बलनेस लाएंगे। इफ यू आर नॉट हम्बल, यू विल नॉट बी ऑनर्ड। और ऑनर आ जाए, हम्बलनेस हो जाए, इससे प्यारा कॉन्फिडेंस कोई नहीं है। दैट्स इट, बाकी तो निरा हवा हवला है। आप जितने मर्जी ओवर कॉन्फिडेंट हों, बदतमीजी करें लोगों के साथ, उनकी इज्जतों को खराब करें, ये आपकी चॉइस है। तो कॉन्फिडेंस हमेशा सच में होता है, बात में वजन होता है। जो बात मेरे पास है वो बात सही है, मैं इसको जैसे मर्जी पेश कर दूँ, इसके बाद, इससे पहले, इससे शुरू। फिर इसमें एक और चीज़ बहुत ही काबिले गौर है, और वो क्या है? क्या हम चाहते हैं कि हमारी खुशियाँ इस तरह फीकी हों? देखिए ना, शादी के मौके पे जो धमाचौकड़ी चल रही होती है, जो शादी के मौके पे बेकार चीज़ें चलती हैं, राइट अवे अगर वहाँ किसी की डेथ हो जाए या किसी को हार्ट अटैक हो, फिर उसके बाद कहा जाए चलो इसको तो भेजो हॉस्पिटल, कंटिन्यू इट प्लीज़, कंसर्ट शुरू रखिए, इस फोटो सेशन शुरू कीजिए, करता है कोई? एक सेकंड लगता है हमारी दिल के जज्बे और खुशियों के गम में ढलने का। तो क्या इस तरह के मौके पे ऐसी चीज़ों में हम फिर रुक जाएं और अल्लाह का हुक्म समझ के अपनी खुशियों के मौके पे ना रुकें? कई घरों में शादी से कुछ अरसा पहले ही कोई मौत आती है, हो जाती है, फिर कहते हैं अब डेट तो रखी हुई थी, चले अब हम सादगी से शादी करेंगे। तो आप पहले भी कर सकते, सादगी मुराद नहीं है, सुन्नत मुराद है। तो बहरहाल अल्लाह ताला अपनी समझ दे। तो यहाँ फिर एम्बेसडर ऑफ गुड डीड क्या थी? मुसीबत, खुशी का गम में बदलना। कभी बहुत भी खुश हो ना तो इस बात को याद कर लें, मुझे क्या पता अगले ही लम्हे क्या होगा, मैं अभी फोन उठाऊंगी और मैं इधर से क्या पढ़ूंगी, अल्लाह ना करे कोई एक बात, खबर, कोई मैसेज लिखाओ, मेरी सारी खुशी खत्म हो जाएगी। तो इससे फिर इंसान के पांव जमीन पर रहते हैं। और ये भी खुशकिस्मत था कि जिसने इस मौके को कैश करा लिया, बहुत सारे लोग तो इसके बाद दोबारा वैसे तैयार हो जाते हैं मजीद गुनाह करने के लिए जैसे कि वो पहले कर रहे थे। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दें।